दबी दबी पांव से कुछ कह रही हैं, आज दिन बहुत खास है, आज दिन बहुत खास है, पधारे आज बहुत ही खास मेहमान हैं, पधारे आज बहुत ही खास मेहमान हैं, थोड़ा सा वक्त देकर इनका स्वागत करें, थोड़ा सा वक्त देकर इनका स्वागत करें, क्योंकि ये हमारी शान है, क्योंकि ये हमारी शान है। स्वागत है आपका आपके प्रोग्राम गौधली में, जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी खास मेहमान से। तो आइए आज देखते हैं कौन है हमारे बीच खास और क्या कुछ जानकारियां हमें मिलने वाली हैं। तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
गोंडा शहर की धड़कन।
मैं पढ़कर अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ, मैं भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ।
सारे सपने होते हैं साकार, क्वालिटी एजुकेशन के साथ सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज, जहाँ एजुकेशन के साथ स्टूडेंट्स के कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम किया जाता है, जहाँ है वेल इक्विप्ड लैब्स, प्रॉपर लाइब्रेरी और ग्रीन कैंपस। साथ ही साथ आपको मिलता है वोकेशनल कोर्सेज में योगा, कंप्यूटर, म्यूजिक, ब्यूटिशियन, स्टिचिंग, टेलरिंग और रेडियो जॉकी, जो आपके बच्चे को देता है एक नई उड़ान। साथ ही साथ NSS, स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज की रेगुलर क्लासेस। गोंडा जनपद का पहला गर्ल्स कॉलेज सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9450 75 74 83, 9450 75 74 83।
ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
नाउ लिसनिंग ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गौधली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आज फिर से हम हाजिर हैं गौधली में एक नए मेहमान के साथ, और हर रोज हर मेहमान से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में काम आती है। साथ ही उनकी जिंदगी से हमको ना जाने कितनी सारी बातें सीखने को मिलती है। आज उसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर विनीत मोदी, जो कि डायरेक्टर हैं कस्तूरी हॉस्पिटल। सबसे पहले तो सर, अब आप कम करते हैं अपने इस शो में जिसका नाम गौधली है।
थैंक यू अदनान जी, दिस इज़ रियली अ प्राइड फॉर मी एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, और मुझे लगता है कि मैं शायद इस इंटरव्यू में कुछ हेल्पफुल हो सकूँ गोंडा वालों के लिए। थैंक यू।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच टू यू सर, क्योंकि आप आए, अपना कीमती वक्त निकाला, और जैसा कि आपने बताया कि आप डॉक्टर साहब हैं, तो आपसे वैसे भी बहुत सारी बीमारियों के बारे में हम जानकारी लेंगे और गोंडा वालों को डेफिनेटली इसका फ़ायदा होने ही वाला है। Sure. तो सर अपने इंटरव्यू के स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले चूंकि हमारे कई सारे ऐसे श्रोतागण होंगे जो आपके बारे में नहीं जानते, तो हम चाहेंगे कि अपना एक संक्षिप्त विवरण आप खुद दे दें।
जैसा आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम डॉक्टर विनीत मोदी है, मैं MD फिजिशियन हूँ, कंसल्टेंट फिजिशियन। मैं यहाँ कस्तूरी हॉस्पिटल, जो कि बड़गांव पुलिस चौकी के पास है, वहाँ पे एज ए फिजिशियन वर्क करता हूँ, और मुझे वर्क करते हॉस्पिटल रन करते इट्स ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, और इस पीरियड में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, और अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स किए कि किसी भी तरह हेल्थ सेक्टर में जो भी अपना योगदान दे सकूं दूं, और बाकी तो जैसा आप पूछेंगे मैं रिप्लाई करूंगा, काफ़ी डिटेल्स हैं बताने को आपको।
बिल्कुल बिल्कुल, तो जितनी भी बातें हैं वो तो आज निकल के सामने आएगी।
हाँ जी, हाँ जी।
तो इसी कड़ी में हम चाहते हैं कि पहले तो अपनी थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दें, जिससे कि हमारे श्रोतागण आपको जान सके कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपके पेरेंट्स के बारे में, सिबलिंग्स आप लोग कितने थे और बाकी लोग अभी क्या कर रहे हैं इसको।
श्योर श्योर, एक्चुअली आई वॉज बॉर्न इन गोरखपुर बट ब्रॉट अप इन गोंडा, एंड माय फादर इज़ अ बिजनेसमैन, हिज नेम इज़ मिस्टर विष्णु कुमार मोदी, ही ओन्स शॉप, इट्स अपोजिट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बाय द नेम ऑफ अग्रवाल मेडिकल हॉल, and he is in this business, he's a chemist since last almost 60 years, and our family is basically a business family and most of us are in medicine trade, मेरी मदर शी इज़ अ वेरी लर्नड लेडी एंड उनका नाम है श्रीमती दीपाली मोदी जी, और वो अपने टाइम की काफ़ी पढ़ी हुई हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। एंड वी आर टू ब्रदर्स, आई एम द एल्डर वन, और मेरे छोटे भाई साहब हैं मिस्टर अंशुल मोदी, ही इज़ ऑल्सो अ बिजनेस मैन, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ हिज बिजनेस इन लखनऊ एज वेल एज इज इन सपोर्ट विद फादर ऑल्सो, एंड माई वाइफ शी इज़ अ होम मेकर, शी इज मिसेस गुंजन मोदी, एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड एंड गुड इन मैनी थिंग्स, आई अप्रिशिएट हर। एंड आई हैव थ्री किड्स, माई डॉटर श्रेया शी इज़ इन मेडिकल कॉलेज MBBS फाइनल ईयर, आई हैव टू सन्स, एल्डर वन इज श्रेष्ठ मोदी इन ग्रेट सिक्स एंड अथर्व मोदी ग्रेट फाइव, बोथ आर स्टडिंग इन यशपीवल स्कूल इन गोंडा इटसेल्फ, एंड माई सेल्फ, दिस इज़ माई फैमिली।
क्या बात है, तो मतलब पहली बात तो ये कि सारे परिवार ने ये ठान लिया है कि हेल्थ सेक्टर में एक अच्छा काम करना है।
कुछ हम लोग का इस तरह का रहा गोंडा में शुरू से कि मेडिकल और मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड रहे, और मेरे अंकल जिन्हें हम ताऊजी कहते हैं, ही वाज आल्सो वेरी फेमस एट इस टाइम, लाइक जब उन्होंने स्टार्ट किया अबाउट 40-50 ईयर्स बैक, डॉक्टर ओएस मोदी, ही इज़ आल्सो वर्किंग एज अ फिजिशियन राइट नाउ आल्सो, तो एक उनकी वजह से भी हम लोग को एक एनकरेजमेंट मिला, सो बिजनेस एज वेल एज मेडिकल प्रोफेशन वॉज गोइंग टुगेदर।
बिल्कुल, तो ये पहली चीज़ तो हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि माहौल था आपके घर में, जाहिर सी बात है ज़्यादातर, या ये क्यों कहे कि सभी के सभी हेल्थ सेक्टर में रहें, उसी का असर आप पे भी आया है या आपको लगता था कि नहीं ये एक बेस्ट सेक्टर ऐसा है जहाँ पे आप सच में मतलब एक सोशल वर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि सोशल वर्क मुझे नहीं लगता सिर्फ किसी को कुछ देने से होता है, आप जो काम जिस प्रोफेशन में उसको ईमानदारी से करते हैं, समाज के बीच में सोसाइटी को सर्व करते हैं, तो वो भी एक सोशल वर्क है।
एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छा बताया, ये एक्चुअली बैकग्राउंड होने की वजह से नो डाउट थोड़ा इजी स्मूथ था इस प्रोफेशन में आना, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से ऐसी फीलिंग होती थी कि कभी कुछ ऐसा बनने के बाद कुछ ऐसा कर सकें जिससे आप ही एक सेवा हो जाए, और बिना कुछ एफर्ट्स के अगर किसी को मुझसे कुछ मदद मिल जाए या कुछ मैं अच्छा कर दूं, तो वो इस प्रोफेशन में बहुत इजीली पॉसिबल है एनी टाइम।
बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, फादर का इतना अच्छा बिजनेस था स्टार्टिंग से, वो लगभग आपने बताया कि 60 ईयर्स से,
हाँ जी,
केमिस्ट के लिए है, तो आपने नहीं सोचा कि उसी काम में आप भी जाएं, आपने डॉक्टर बनने की सोची, आप डॉक्टर साहब अभी आप फिलहाल यहाँ हैं?
एक्चुअली इस प्रोफेशन में रहते इस बिजनेस में रहते हुए मेरे फादर की भी इच्छा रहती थी कि अगर बच्चे डॉक्टर बन जाएं या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में चले जाएं तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो फिर घर का बिजनेस है वो भी अच्छा ऑप्शन है, दे कैन कम एंड ज्वाइन एनी टाइम। सो मुझे ये फील हुआ कि ट्राई, अगर मुझे ये पॉसिबल हो जाता है और मैं कर लेता हूँ इस प्रोफेशन को, तो दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। सो बस इस करके मैंने इसको परस्यू किया और भगवान की कृपा से हो गया
ऐसा, मतलब कृपा रही कि ये हो भी गया, ये बहुत अच्छी बात है। मैं जानना ये चाहूँगा कि जैसे फादर ने आप बताया कि वो कह रहे थे कि भाई आप सिविल सर्विसेज में जाए या फिर डॉक्टर बने, तो आपके जहन में क्या ये इसी सेक्टर में आने का खुद से ही था, या आपने कुछ और भी सोचा था कि नहीं मुझे कुछ और सेक्टर ज्वाइन करना है उसमें जाना है?
नहीं, आपका ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा डिलेमा था और बड़ा कन्फ्यूजन था। हम लोग जब स्कूलिंग करते हैं तो हमारे टाइम पे व्हेन वी फिनिश क्लास 10th, उसके बाद एक बड़ा चैलेंज सा आता है कि आप क्या लेना चाहते हो, किस साइड में जाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। तो हमारे टाइम पे ब्रॉडली तीन चीज़ होती थी, या तो यू चूज साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स। तो हमारे यहाँ बोलते थे साइंस लोगे तो डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, कॉमर्स लोगे तो CA MBA बिजनेस में जाओगे, आर्ट्स लोगे तो मींस यू आर गोइंग टू परस्यू फॉर सम एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स। उस टाइम का ये एक मोटा मोटा ब्रॉड क्राइटेरिया होता था
जी,
और मुझे इतफाक से सभी में इंटरेस्ट था, सब में मार्क्स अच्छे आते थे।
अच्छा।
सब चीज़ में इंटरेस्ट था, इवन स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी अच्छा था।
क्या बात है।
तो अब वो होता है ना, बच्चे होते हैं तो फिल्म देखते हैं, तो हमारे जो फेवरेट हीरोज़ होते हैं अमिताभ बच्चन देखो तो मतलब लगता है बड़े होकर अमिताभ बच्चन बन जाओ,
बस यही बनना है, सही बात है।
क्रिकेट खेलो, हमारे टाइम में सुनील गावस्कर बेस्ट क्रिकेटर हुआ करते, तो लगता था कि यार अपने को जो है वो सुनील गावस्कर बनना है। और फैमिली में लोगों को मालूम रहता था कि कोई ऐसा सब्जेक्ट लें या कुछ करें जो प्रोफेशनली आगे जाके कहीं सेटल हो तो अल्टीमेटली एक बड़ा चैलेंज होता था ये डिसाइड करना, चूज करना। सो हमारे यहाँ बड़े लोगों ने कुछ डिसाइड किया, कहा कि नहीं भाई, जब सब में इंटरेस्ट है साइंस, सो आई ऑप्टेड साइंस। तो फिर उसमें आया कि नाउ मैथ्स एंड बायोलॉजी इक्वली गुड मार्क्स थे, तो ये हुआ कि चाहे ये लो चाहे वो लो। फिर ये भी एक कन्फ्यूजन था, तो उसको भी सॉर्ट आउट किया। बट फिर ये हुआ कि नहीं, हमारे लिए सब कुछ देखते हुए, हमारे फैमिली बैकग्राउंड को ये वो, फिर आई ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी। सो फिर उसी को परस्यू करते हुए आई ऑप्टेड फॉर दिस प्रोफेशन।
ओके, तो मतलब ये तो आपने एक ऐसी बात बता दी जिसको थोड़ा सा बहुत कमी लोग में पाई जाती है कि सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स अच्छे हों और आपको कहा जाए कि आप कुछ करो, आपका हाँ मुझसे कुछ भी करा लो, मैं तो सब कुछ करने के तैयार हूँ।
Exactly.
मतलब अक्सर तो ये देखा जाता है कि ऐसा जोड़ा जाता है कि जो कल्चरल एक्टिविटीज में जो बच्चे ज्यादा अच्छे हैं उनकी पढ़ाई में अगर देखा जाए तो उनका मन नहीं लगता, उनको लगता है कि यार ड्रामा कर लिया, थिएटर कर लिया, इस तरह की चीजें। आप पढ़ने में भी अच्छे थे, कल्चरल एक्टिविटीज पे भी। घर में क्या ऐसा माहौल था कि बाकी आपके सिबलिंग्स भी वो भी कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे, इसके लिए आपको इंकरेज किया जाता था, या आपका पर्सनल था कि आपको पढ़ाई के साथ ऐसी एक्टिविटीज में भी बड़ा इंटरेस्ट आता था?
एक्चुअली मेरे घर में एज सच कोई बाउंडेशन नहीं थी, वी वर ऑलवेज फ्री, वट एवर वी वॉन्टेड वी कैन डू। हमें कोई बंदिश नहीं थी, हम चाहे सिर्फ पढ़ाई करें या सिर्फ कल्चरल एक्टिविटीज़ में जाएं, चाहे कुछ भी करें चाहे कुछ ना करें, बट ये था कि कुछ गलत नहीं करना है, कुछ ऐसा करना है कि जो आपकी गरिमा बनी रहे। और जहाँ तक सिबलिंग्स का सवाल है, तो मेरे बहुत कजिन्स हैं, वी हैव अ वेरी बिग फैमिली है, तो सभी, मतलब यूँ समझिए जब हम फातिमा में पढ़ते थे तो हमारे यहाँ ग्रेड 3 से स्टार्ट होता था और ग्रेड 8-9 तक कोई ना कोई हमारा कज़िन किसी ना किसी क्लास में होता था।
ओके,
तो अलग अलग सबका टेस्ट था, अलग अलग रुझान था, कोई स्टडीज़ में ही सिर्फ थे, कुछ स्पोर्ट्स में थे। मेरे साथ ये था कि थोड़ा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच थी, सब तरफ कुछ ना कुछ था अपना, तो उस तरह से ही चला। और इत्तफाक से जब मैं वहाँ पढ़ता था तो इवन आई वाज गिवन अवार्ड ऑफ बेस्ट ऑलराउंडर आल्सो।
अरे so, क्या बात है,
इट्स अ वेरी स्वीट मेमोरी, सो इट्स लाइक दैट।
तो बहुत अच्छी बात है। और कहते तो हैं कि भाई मल्टीटास्किंग होना सही नहीं है, इस पर भी जरा हम चर्चा करेंगे, हालांकि एक अलग का विषय है। लेकिन अभी चूंकि छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो चला है, तो अपने लिसनर से हम कहेंगे कि बस एक छोटे से ब्रेक के लिए जाते हैं, आप बने रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम पे, लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। नाउ लिसनिंग ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन,
गोंडा शहर की धड़कन।
हम वहीं पे चल दिए, हमने छोड़ दी सनम हर फिकर कल के लिए, हर फिकर कल के लिए। हाँ जी, दिल जहाँ पे थम गया हम वहीं पे थम गए, घर बसा लिया सनम हमने पल भर के लिए, हमने पल भर के लिए। हो जी, रास्ते की ठोकरे खाके कभी रो पड़े, हंस दिए हालात पे और चल दिए। हाँ, दूर किसी से हो गए, पास किसी के आ गए, करके सबको अलविदा हम चल दिए, दिल जहाँ फिसल गया उस गली से बढ़ गए, झाड़ के पतलून को दिल के पीछे चल दिए, दिल के पीछे चल दिए हाजी, दिल जहाँ पे ले चला हम वहीं पे चल दिए, हमने छोड़ दी सनम हर फिकर कल के लिए, हर फिकर कल के लिए हाजी। का दस्तूर है मेरा क्या कसूर है, जिस जगह मुड़ी डगर हम मुड़ गए, ना किसी से बैर है ना कोई भी गैर है, इस निगाह जुड़ी नजर हम जुड़ गए, दिल जहाँ पे लग गया हम वहीं के हो गए, जहाँ से उठ गया हम तो भाई निकल लिए, हम तो भाई निकल लिए हाँ जी, दिल जहाँ पे ले चला हम वहीं पे चल लिए, हमने छोड़ दी सनम हर फिकर कल के लिए, हर फिकर कल के लिए हाँ जी।
ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल इन द फील्ड ऑफ डिसिप्लिन। एडमिशन ओपन फ्रॉम LKG टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासेस, कन्वेयंस फैसिलिटी, स्काउट गाइड एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरनाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450 9999।
ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
गोंडा शहर की धड़कन।
जब भी पहनिए कुछ खास पहनिए। आ गया है आपके अपने गोंडा शहर में साड़ी संसार, जो लेकर आता है आपके लिए सभी प्रकार के वैवाहिक एवं फैंसी साड़ियों का लेटेस्ट कलेक्शन, जिनमें शामिल है सलवार सूट, लहंगा चुनरी, लेगिंग जैगिंग, ब्लाउज, पैंट, कुर्ती, शरारा गरारा, सभी उचित मूल्यों में उपलब्ध हैं। पता है गांधी पार्क के सामने, हनुमानगढ़ी रोड निकट LPS चौराहा, मालवीय नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9936 19 3000 9936 19 3000।
ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
गोंडा शहर की धड़कन।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करता है आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजी अदनान, मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विनीत मोदी। सर, आपने बताया कि भाई आपको ऑलराउंडर का खिताब मिल चुका है। ऑलराउंडर होना खराब नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल की समस्या देखी जाती है कि लोग एक ही टाइम में कई सारी चीजें करने के लिए बेताब रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई कर नहीं सकता, लेकिन देखिए ना, कैलिबर होता है, सबके अपने दायरे होते हैं, ठीक है। किसी इंसान में कुछ स्ट्रेंथ है, किसी में कुछ है, इसको लेके आप थोड़ा सा बताइए, इसके बाद फिर हम आपके एकेडमिक्स पे भी आते हैं।
मानना है कि लाइक अगर आपको अलग अलग फील्ड में अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट है, एंड यू कैन डू इट, इट्स ओके फाइन, वन शुड डू इट। किसी की कुछ हॉबी है, किसी की कुछ हॉबी है, तो परस्यू करता है एंड वन इज नॉट डिस्टर्बिंग द अदर थिंग, सो इफ़ इट कैन बी मैनेज्ड तो किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. मेरी भी कुछ हॉबी है, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग एज पे चेंज भी हुई है. कभी छोटे थे तो कुछ गेम्स की थी, फिर बड़े हुए कुछ और हुई, फिर कभी सिंगिंग हुई, फिर कभी डांसिंग हुई, अलग अलग टाइम पे फिर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की हुई. सो इफ़ यू कैन मैनेज तो इट्स ओके फाइन. और कभी कभी कुछ लोग मतलब आई इवन फील कि मल्टी टास्किंग इज ओके फॉर मी, आई कैन मैनेज इट.
ओके,
इट्स ओके.
तो वो आपकी क्वालिटी की आप मैनेज कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं कि हर इंसान मैनेज कर पाएगा.
डेफिनेटली हर आदमी अलग बना है और हर आदमी अपने आप में खास है और सबका अपना अपना कैरेक्टर है, सबके अपने अपने वे ऑफ लिविंग है, तो एवरीथिंग इज फाइन.
बिल्कुल. लेकिन आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जिस पे मैं खुद भी बिलीव करता हूँ, चीज़ों को चेंज करता रहता हूँ.
हाँ,
उससे
हाँ,
पता चलता है कि मेरी किस चीज में कहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा है.
राइट,
या मेरे लिए क्या बना है.
एग्जैक्टली.
तो ये तो बहुत अच्छी बात है और हमारे श्रोताओं से भी हम यही कहना चाहेंगे कि भाई वो खुद भी चीज़ों को कर करके देख सकते हैं. एडवाइस अच्छी होती है, राय अच्छी होती है, लेकिन जो चीज़ आप खुद से करके फील कर पाते हैं उससे बेहतर तो
बेस्ट होता है.
वो बेस्ट होता है. राइट. एकेडमिक्स के बारे में आते हैं.
सर अब यूँ समझिए कि स्टार्टिंग जिसे हम प्री स्कूल कहते हैं, लाइक LKG UKG, आई स्टडीड इन रवि चिल्ड्रन स्कूल. हमारे टाइम में वही बहुत अच्छा स्कूल होता था, अभी भी अच्छा. और उसके बाद फिर एक फातिमा कॉन्वेंट करके नया स्कूल खुला गोंडा में, टोटली इंग्लिश मीडियम. उस समय हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का बड़ा एक वो रहता था कि भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो अच्छा ही होगा,
तो ये गारंटी होती थी.
हाँ, मतलब उस समय ये लगता था कि इंग्लिश मीडियम है तो बहुत बड़ी बात है. तो फातिमा कॉन्वेंट आया, तो आई गॉट एडमिशन देयर इन ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री पढ़ा. उसके बाद एकदम से पता चलने लगा कि शायद अभी स्कूल आगे फर्दर नहीं, अभी इसमें क्लासेस चलेंगी, ये ग्रेड फोर ग्रेड फाइव के बाद अभी स्टॉप हो जाएगा. तो मेरे पेरेंट्स थोड़ा वल्नरेबल हुए, परेशान हुए कि अब कैसे क्या, आगे फिर कहाँ पढ़ेंगे बच्चे. तो इतफाक से मेरी कुछ मतलब मेरी मौसी थी, वो देहरादून में थी, उनको भी पता चला. तो उन्होंने कहा कहीं नहीं, मैं उसको यहाँ बुला लूँगी और ग्रेड थ्री यहाँ करके मैं फिर देहरादून चला गया कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज में. इट वॉज़ वेरी फेमस स्कूल एट दैट टाइम एंड वो बोर्डिंग स्कूल था. तो आई गॉट एडमिटेड देयर. फिर आई कम्प्लीटेड माई ग्रेड फोर, ग्रेड फाइव, ग्रेड सिक्स. इसी बीच में मेरी मदर बहुत मुझको मिस करने लगी, बहुत रोती थी.
ओके.
क्योंकि उस टाइम में डिस्टेंस मैटर्स, क्योंकि अभी की तरह इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी. पहले हम लोग इनलैंड लेटर लिखते थे तो एक हफ्ते में, 10 दिन में पहुँचता था. ट्रंक कॉल करते थे तो बात होती थी. तो मेरी मदर को लगा कि नहीं, शायद अब बहुत दिन बच्चे को बाहर रखना नहीं ठीक है. इसी बीच में पता चला कि फातिमा स्कूल भी आगे कुछ अब और ओपन हो रहा है, इसके क्लासेस बढ़ रहे हैं. तो आई केम बैक अगेन एंड आई गॉट एडमिटेड इन फातिमा स्कूल. आई कम्प्लीटेड माई 10th फ्रॉम देयर एंड फिर वो 10th तक ही था, उसके बाद आगे यहाँ नहीं क्लासेस थी. तो फिर हमने आगे फिर सोचा आप कहाँ जाएँ, तो फिर लखनऊ वॉज़ वेरी क्लोज टू अस. लकीली ड्यू टू सम सपोर्ट आई गॉट एडमिशन इन कॉलविन तालुके दास कॉलेज इन लखनऊ. इट इज़ वेरी फेमस कॉलेज. अगेन इट वॉज अ बोर्डिंग स्कूल. आई वॉज अ बोर्डर ओवर देयर. आई कम्प्लीटेड माई 11th एंड 12th फ्रॉम देयर विद बायो एंड फिर आई गॉट एडमिशन इन मीन्स लखनऊ यूनिवर्सिटी इन ग्रेजुएशन BSc. आई वॉज परसुइंग BSc, बट इन द मीन टाइम आई वॉज समवॉट इन्वॉल्व इन माई फैमिली बिजनेस ऑल्सो. फादर विल वॉज कि आई शुड गो एंड परस्यू सम मेडिकल कोर्स. तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड, हिज फादर वॉज इन गवर्नमेंट जॉब. सो वो गोंडा पोस्टेड थे कभी, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और समझाया कि उनका बच्चा बाहर गया आउट ऑफ इंडिया रशिया पढ़ने, रोस्टर वन डॉन. तो ही मोटिवेटेड मी एंड आई ऑल्सो थाट कि अगर मेरा कहीं चूँकि वो फ्रेंड है उसके साथ होता है तो मैं आई कैन ऑल्सो परस्यू. तो आई स्टडीड माई मेडिसिन फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम अल्मा आटा मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड आफ्टर परस्यूइंग इट आई कम्प्लीटेड देयर अबाउट 7 year कोर्स एंड आई रिटर्न बैक टू दिल्ली, न्यू दिल्ली. देयर आई कम्प्लीटेड माई रेजिडेंटशिप इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स, फेमस हॉस्पिटल्स लाइक राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग हॉस्पिटल. एंड लकीली आई गॉट एडमिशन यू कैन से इन द फर्स्ट एमरजेंसी मेडिकल डिपार्टमेंट इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स इन न्यू दिल्ली. एंड आफ्टर दैट आई वॉज देयर डूइंग माई मीन्स प्रैक्टिसिंग देयर एज अ रेजिडेंट डॉक्टर. इसी बीच में आई वॉज प्लानिंग टू सेटल इन दिल्ली. तो फिर ये हुआ कि घर पे भी कोई नहीं है, पेरेंट्स भी काफ़ी मिस करते थे, तो ये हुआ इतने सालों से बाहर ही बाहर रहे हैं, अब तो कब तो घर आ जाओ।
सही बात है।
तो अल्टीमेटली फिर ये हुआ कि नहीं, आई शुड कम बैक टू माई होम टाउन। तो हम गोंडा आ गए, गोंडा आके फिर यहाँ पे अपना एज अ फिजिशियन प्रैक्टिस स्टार्ट की और एक कस्तूरी हॉस्पिटल करके सेटअप स्टार्ट किए।
ओके, तो ये तो पूरी आपने एक जर्नी बता दी, इस बीच में बहुत सारे ट्विस्ट भी आए होंगे।
सर डेफिनेटली ट्विस्ट सबकी लाइफ में आते हैं, और वो ट्विस्ट आप प्रिसाइजली पूछोगे तो मैं बता पाऊंगा, क्योंकि इतनी डिटेल में तो मुझे भी बताना मुझे लग रहा बहुत टफ हो जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सबसे पहली चीज़ तो ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप अब्रॉड भी गए, आपने वहाँ अपनी स्टडी पूरी की, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था और वहाँ पे आप क्या देखते हैं? जैसे एजुकेशन सिस्टम एक हमारे यहाँ है, आपने रशिया की बात की, तो क्या एक मेजर डिफरेंसेस क्या पाते हैं आप?
सर बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। यूँ समझिए कि पहली चीज़ तो अपने यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और उनकी पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम है, तो अपने यहाँ रिसोर्सेज होते हुए भी हमेशा शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज रहते हैं। एजुकेशन 100-200 साल पहले 100% लिटरेसी रेट हो चुका है, अपने यहाँ अभी क्या स्टेटस है मुझे नहीं मालूम, बट मुझे लगता है शायद अभी 100% लिटरेसी नहीं होगी अपनी कंट्री में।
बिल्कुल।
बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट के एंड से, या जो एक सिटीज़न का जो एक पैट्रियोटिक फीलिंग या अपने नेशन के प्रति जो होता है, उसमें ही बड़ा डिफरेंस है। तो मुझको लगता है कि सेक्टर जिसमें मैं वहाँ पे था, तो मैंने देखा कि बहुत ही ऑर्गेनाइज सेक्टर है, एंड एट दैट टाइम हेल्थ वॉज फ्री टू एवरीवन,
सभी के लिए फ्री।
जी हाँ, और बहुत ही प्रॉपर वे में मैनेज थी, लोग बहुत अवेयर थे, उनको मालूम था हेल्थ क्या है, उन्हें अपनी हेल्थ की कैसे केयर करनी है। और शायद अभी अपने इंडिया में चूंकि डेवलपिंग कंट्री होने की वजह से पहले के कंपैरिजन में अब बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, गवर्नमेंट ने बहुत फैसिलिटीज़ बढ़ाई हैं, बट स्टिल इट विल टेक टाइम, धीरे धीरे और यहाँ भी चीज़ें बेटर होंगी। और पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा इशू है जो काफ़ी चीज़ों को डिस्टर्ब कर देता है, मुझे लगता है।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा इशू है, और सेकंड थिंग ये है कि हमको भी समझना होगा कि चीज़ें हम कैसे खुद से बेहतर कर सकते हैं।
डेफिनेटली डेफिनेटली।
एक तो ये है कि ज़्यादातर कोशिश ये करना है कि हम कम खाएं, लेकिन पढ़ाई वाली बात जो एक होती है
जी,
तो बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता सिर्फ पढ़ाना इसलिए चाहिए कि बच्चा कमाएगा या वो सेटल हो जाएगा, बल्कि उसको ज़िंदगी में क्या करना एक उसका उद्देश्य होता है।
डेफिनेटली।
हर किसी का होता है कि हम यार पैदा क्यों हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आया, तो कुछ ना कुछ तो करने आया हूँ ना।
Exactly.
तो डेफिनेटली जब भी आप जो काम अगर ईमानदारी से कर रहे हैं तो आपको लगता है शायद यही मेरा काम था।
जी, जी।
तो बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए, आपने सेटअप किया कस्तूरी हॉस्पिटल, लगभग कितना टाइम हो गया आपको?
सर ऑलमोस्ट 20 years हो गए।
20 साल से आप कर रहे हैं।
हाँ जी।
पहले जब आपने सेटअप किया था तब कैसा था, और अभी आप कहाँ तक उसको ले आए हैं?
सर जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ किया था, और अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट की तो बहुत ही नया नया सा सब कुछ था, और धीरे धीरे टाइम लगा, बट एक्सेप्टेंस बढ़ी, लोगों ने एक्सेप्ट किया और अच्छा काम करना शुरू किया। एज अ फिजिशियन जो भी मेरे हाथ से हो सकता था वो किया, प्लस मेरे सेटअप में जो डॉक्टर्स मेरे साथ अटैच हुए वो अपने टाइम के सब बहुत फेमस डॉक्टर्स थे यहाँ के, तो धीरे धीरे काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली और काफ़ी मैंने अपने को देखते हुए डेवलप भी किया, अच्छी सर्विसेज भी दी, और लोगों ने उसको मींस अप्रिशिएट भी किया। फिर एक यू कैन से आफ्टर स्पैन ऑफ 15 years, जो लास्ट 5 years गए वो काफ़ी अप एंड डाउन्स के गए, गवर्नमेंट की कई पॉलिसीज नहीं आई, काफ़ी चेंजेस हुए हेल्थ सेक्टर में, तो उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लोग पे भी इम्पैक्ट आया है, बट मोर और लेस थिंग्स आर गोइंग वेल। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड न्यू थिंग्स इन आर सेटअप, हमने अभी कुछ अपने यहाँ नई चीज़ें सुपर स्पेशलाइजेशन के लोगों को भी अपने साथ जोड़ा है, कैंसर स्पेशलिस्ट ऑनकोलॉजिस्ट भी अब हमारे यहाँ आ रहे हैं, यूरोलॉजिस्ट गुर्दा रोग विशेषज्ञ भी हैं, पहले से ऑलरेडी डिफरेंट स्ट्रीम्स के लोग, मैं तो एज ए फिजिशियन वर्क करता हूँ, मेरे साथ काफ़ी पॉपुलर सर्जन काफ़ी टाइम से अटैच हैं, डॉक्टर विवेक मिश्रा जी हैं, पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अग्रवाल हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और काफ़ी जो भी हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ हैं मल्टीपल जो सेक्टर्स की हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वो है ही हैं, साथ में कुछ डायग्नोस्टिक चीज़ें भी हैं हमारे यहाँ, जो रूटीन डायग्नोसिस है वो भी वहाँ पे हो जाती है ड्यू टू डिफरेंट टूल्स लाइक पैथोलॉजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड्स एंड इको एंडोस्कोपी एंड ऑल दैट. सो चीज़ें हैं, ठीक हैं, स्मूथ लाइन चल रहा है और अभी आगे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ और डेवलपमेंट्स होंगे, अपनी तरफ से पूरा ट्राई करते हैं.
जी, तो आपने बताया कि जब स्टार्टिंग में आया तो जाहिर सी बात है जब इनिशियल लेवल होता है तो वहाँ पे आप करके सीख रहे होते हैं और ख़ुद से चूँकि किया है, एक 20 साल का वक्त दिया है तो आपने एक पूरी जर्नी कहीं ना कहीं पूरी की है और आज बता रहे हैं आपकी लोगों में एक्सेप्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा आपके हॉस्पिटल को लेके है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उन लोगों को जोड़ के काम किया जिनका पहले से एक अच्छी इमेज थी, जो अपने फील्ड में एक अच्छा काम कर रहे थे. और कहते हैं ना कि जब टीम एक अच्छी होती है, जब आपको अच्छे हैंड्स मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर वो आपका काम बहुत अच्छा हो जाता है, फिर वो किसी भी हम सेक्टर की बात करें, कैसे भी बात करें. अभी आपने कहा कि काफ़ी सारी आप फैसिलिटी दे रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम है कि उनको एक छत के नीचे सारे मिल नहीं पाते, लेकिन आपने कहा कि भाई अभी हाल की बात है, चीज़ें आप अपडेट भी लगातार कर रहे हैं और आपके यहाँ और स्पेशलाइजेशन के जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार चलते चले आ रहे हैं. फ्यूचर का क्या आपने सोचा, कहाँ तक इसको आपको ले जाना है?
सर, अपना तो यही विजन है कि जहाँ तक हो सके और भी इसमें कुछ ना कुछ एडिशन हो और स्पेशलिस्ट बढ़ें और सर्विसेज बढ़ें. बाकी इट ऑल डिपेंड्स कि आगे टाइम बताएगा किस तरीके से हम आगे क्या प्रोग्रेस करते हैं, बट ये है कि अपने तरफ से पूरे एफर्ट्स रहेंगे कि कुछ ना कुछ और ग्रोथ इसमें होती रहे.
ओके. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देखने में आती है वो आती है कि पेशेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर अवेयरनेस की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है. आप रोज़ ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को डील करते होंगे. गोंडा के सिनारियों में आप जानते हैं कि लोग चीज़ों को उतना समझ भी नहीं पाते हैं. समटाइम्स वो आते हैं और प्रॉब्लम शायद वो प्रॉब्लम तक भी वो सही से नहीं बता पाते. तो आप पेशेंट हिस्ट्री पे कितना बिलीव करते हैं या कितना ज़्यादा उसको प्रायोरिटी में लेते हैं कि पेशेंट की हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें थी, कैसे कैसे थी? क्योंकि मुझे लगता है एक प्रॉपर वे में जो ट्रीटमेंट होता है, एक डॉक्टर का काम ही होता है कि उसकी हिस्ट्री को भी देखना कि पहले इनको क्या था, कैसे कैसे ये बीमारी की ग्रोथ कर रही है, इसको लेके आपका क्या कहना है?
सर, मेडिकल प्रोफेशन में हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और जो पुराने डॉक्टर्स होते थे वो बेसिकली बिना किसी टूल के, बिना किसी बहुत बड़ी इक्विपमेंट या मशीन के, सिर्फ कंप्लेंट हिस्ट्री और अपने जनरल एक इवैल्यूएशन से ही सारी डायग्नोसिस बना के ट्रीटमेंट करते थे और ठीक करते थे, ट्रीट करते थे, पेशेंट को क्योर करते थे. अब चूंकि और फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं तो शायद हिस्ट्री का पार्ट बड़ा पुअर हो गया है, हिस्ट्री पे तवज्जो देना कम हो गया है, लोगों के पास टाइम नहीं है और शायद पेशेंट की भी कहीं ना कहीं मेंटेलिटी ऐसी हो गई है, सोचता है अक्सर बहुत बात करते हैं, बहुत पूछते हैं, ये नहीं कि तुरंत टेस्ट कराएं और दवा लिख दें. तो दोनों ही एंड से चेंजेस आए हैं. तो मैं समझता हूँ मेडिकल हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगर आप अच्छे से टाइम देते हैं और प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं तो आधा काम आपका वैसे ईजी हो जाता है. और जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, पहले से गोंडा में बहुत अवेयरनेस बढ़ी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ी है, मेडिकल अवेयरनेस बढ़ी है, बट स्टिल पीपल आर लैकिंग. अभी क्या है कि बहुत विजन क्लियर नहीं होता है कि वो पहली चीज़ तो किस पैथी पे जाएं. अभी क्या है कि इंग्लिश मेडिसिन एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदी है, यूनानी है, सो 4-5 सेक्टर्स तो ही हैं जिसमें से वो ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं हम किसको जाएं. अगर वो डिसाइड भी कर लेते हैं तो उनका फिर एक डिलेमा ये होता है कि डॉक्टर तो बहुत हैं, डॉक्टर में अब किस डॉक्टर को दिखाएं.
बिल्कुल
ना, तो अभी ये सब कन्फ्यूजन्स हैं. तो बट मुझे लगता है कि हर आदमी को कोई ना कोई अपना एक प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर अपने पास कंसल्टेशन के लिए रखना चाहिए और कोई भी बेसिक प्रॉब्लम के लिए उसको पहले उसी को कंसल्ट करना चाहिए. एंड इफ द प्रॉब्लम इज सॉर्टेड आउट, उसका क्योर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उन्हीं की राय से या अपने हिसाब से देख के कि भाई इसको और हम फर्दर किस स्पेशलिस्ट के पास, किस डॉक्टर के पास जाके कर सकते हैं क्योर, इस पे उसको अपना ध्यान देना चाहिए.
जी, तो आपने कहा कि एक तो मेडिकल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है पेशेंट्स की एंड सेकंड थिंग ये है कि उनको ये इस चीज़ की बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये किस पैथी के जरिए जाके क्योर कराना चाह रहे हैं.
हाँ जी,
इसको कैसे समझा जा सकता है क्योंकि तीन बड़ी पैथियाँ सुनने में जो आती है, आयुर्वेदिक है, एक एलोपैथिक है, एक होम्योपैथिक है. तो कुछ ऐसी बीमारियां भी होती होंगी जो पैथी के अकॉर्डिंगली ज़्यादा असर करती होंगी?
सर, मैं हर पैथी के बारे में तो नहीं बता सकता, बट ये है कि एलोपैथ को ही हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बारे में बता सकता हूँ. और जहाँ तक दूसरी पैथी का सवाल है तो जो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ तक आयुर्वेद है, अब आयुर्वेदिक चीज़ें हम लोग के फैमिली में भी बचपन से हम लोग यूज़ करते आए हैं, तो मैं ये समझता हूँ वो एक प्रोफिलैक्सिस के रूप में कि आप बीमार ना पड़ें, आप स्वस्थ रहें, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, उसमें तो मैं उसका एक अच्छा इंपॉर्टेंस समझता हूँ. और बाकी और पैथीज में भी अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। बट एलोपैथ में तो क्या है कि मेरा मानना है कि अगर आपको कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हो गए हैं या कोई आपकी एक्यूट प्रॉब्लम है तो उसमें एलोपैथ का बहुत अच्छा रोल है और एलोपैथ लोग काफ़ी बेनिफिटेड हैं, उससे उनको राहत मिलती है। और ये सिलेक्शन तो जो भी पेशेंट है उसको ही करना पड़ेगा कि उसको किस तरफ जाना है, और जिस भी सपोज़ वो एलोपैथ में आता है तो ये डिसाइड करना कि एग्जैक्टली हमको किसको कंसल्ट करना है, बेसिकली पहले या बाद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके, यानी ये अवेयरनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि किसको कंसल्ट करना है।
एग्जैक्टली
ये बात हुई। आप चूंकि एक कंसल्टेंट फिजिशियन है तो पहले तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये कंसल्टेंट फिजिशियन का काम क्या होता है।
सर, अब आप यूँ समझो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है और आप उसको कंसल्ट करना चाहते हो किसी डॉक्टर से, तो मेरी राय ये रहती है कि आप अपने फिजिशियन से सबसे पहले कंसल्ट करें। अगर उसका सारा कुछ डायग्नोस ये बनता है कि ये मेडिसिन से या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो आपका ट्रीटमेंट वहाँ हो जाएगा। अगर वो कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट है तो ऑब्वियसली वो आपको सर्जन के पास रेफर करेंगे। अब सर्जरी में या मेडिसिन में भी कोई स्पेशल ऐसी प्रॉब्लम है कि जनरल सर्जन से हटके कोई स्पेशलाइज सर्जरी रिक्वायर्ड है तो आज की डेट में सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन्स भी अवेलेबल हैं, सुपर स्पेशलिस्ट फिजिशियंस भी अवेलेबल हैं, तो आप उस भी लिमिट को टच कर सकते हो अगर इफ़ रिक्वायर्ड।
बिल्कुल, तो ये आपने बताया कि भाई जो भी जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए आप फिजिशियन के पास ही आते हैं, वहाँ से कंसल्ट करके फिर वो आपको बताते हैं, सजेस्ट करते हैं कि किसके पास आपका जाना बेहतर होगा
इफ रिक्वायर्ड,
अगर कोई रिक्वायरमेंट ऐसी होती है तो, अदरवाइज उसी लेवल पे वो रिजॉल्व हो जाता है।
एग्जैक्टली
बिल्कुल। तो इसी बीच में चूंकि हमारे शॉर्ट से छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का भी वक्त हो चला है, अपने श्रोताओं से हम कहेंगे हमारी बातचीत डॉक्टर विनीत मोदी सर से जारी रहे, मिलते हैं एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
पिघला दे जंजीरे, बना उनकी शम हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला।
रूठी तकदीरे तो क्या, टूटी शमशीरे तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो, जीत का पता, जीत का पता।
इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चर्रा है तू, लोहे का चर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो,
उम्मीदियां ना उम्मीदियां तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के बाहों के निशानों में ढल के ढूंढ लेंगे अपना आशियां अपना आशियां अपना आशियां लम्हों से आंख मिला के रख दे जी जान लड़ा के टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदे हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदे हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदे हर मैदान फतेह
कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह
ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन
गोंडा शहर की धड़कन
सभी अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि फुलवारी पब्लिक स्कूल अब एक नए संस्करण के साथ एवं गोंडा के प्रसिद्ध ब्रांच में से एक फुलवारी पब्लिक स्कूल की प्री प्राइमरी कक्षाओं में 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो गया है। विश्वास फिर से बनेगा और पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा, इसलिए अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए फुलवारी पब्लिक स्कूल से जुड़े। फुलवारी पब्लिक स्कूल की दूसरी ब्रांच का पता है पीपल चौराहा गायत्री आहार स्थल चौक गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9140836139 और 7800522022।
ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
वाओ 3D बबल्स वाली टाइल्स, अरे यही तो चाहिए थी मुझे अपने बाथरूम के लिए।
जी हाँ, अब आपको मिलेगी आपकी मनपसंद प्रीमियम क्वालिटी टाइल्स, वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, किचन टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, हर डिजाइन और हर साइज की टाइल्स अवेलेबल हैं। अब सपनों का आशियाना बनाना हो गया है आसान अवध टाइल्स एंड मार्बल के साथ। एड्रेस नियर गौसिया मस्जिद सर्कुलर रोड गोंडा। फोन नंबर है 9170-298-770 और 6394-699-209।
ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता है। आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर विनीत मोदी, MD मेडिसिन कंसल्टेंट फिजिशियन। सर, आपसे हम बातचीत कर रहे थे और अभी चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती होंगी जिसको लेके आपका दरवाजा ज्यादा ही खटखटाया जाता होगा, जैसे कि आपने क्रॉनिक डिजीज की बात की, तो क्रॉनिक डिजीज में पहले तो हमारे श्रोताओं को आप बताया कि कौन कौन सी डिजीज आती है, किस तरह के मामले आपके पास ज्यादा आते हैं।
एक्चुअली देखिए, दो पार्ट में हम लोग इनको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे एक्यूट कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एक्यूट डिसऑर्डर्स हैं, एक्यूट इलनेस है, और एक क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं जो कि सालों साल चलते हैं और एक बार हो गए तो फिर वो जल्दी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होते। तो क्रॉनिक में यूजली आप कह सकते हैं जैसे डायबिटीज़ है, मधुमेह है, हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप है, और सांस की बीमारियां हैं लाइक अस्थमा है और COPD है, और इसी तरह की कई और भी बीमारियां बहुत सी हैं जो यूजली हम लोग को अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में डील करनी पड़ती हैं। तो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स का बेस्ट पार्ट ये होता है कि उसमें हम पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं कि जहाँ तक प्रिकॉशंस लिए जा सकें वो लें, अपनी लाइफस्टाइल से जो कुछ मैक्सिमम वो बेनिफिट उठा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, करें। अदरवाइज फिर उनका प्रॉपर मेडिकेशन होता है जिसको उनको प्रॉपर वे में डे टू डे लेना होता है और लॉन्ग टर्म तक वो ट्रीटमेंट चलता है। उसमें फिर कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि हमने 2-3 महीना दवा खा ली अब किस बात की, अब तो ठीक हो जाना चाहिए। जैसे बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि 6 महीने से शुगर की दवा खा रहे अभी तक ठीक ही नहीं हुआ तो वो थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है कि यहाँ पे ठीक तो होगा बट ठीक से ज़्यादा ज़रूरी है कंट्रोल होना।
करेक्ट।
और एक्यूट प्रॉब्लम्स या एक्यूट इलनेस होती हैं जो सीजनल वेरिएशन से, मौसम के हिसाब से, या आप कह लीजिए कभी कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं जो टाइम टाइम पे होती हैं, कुछ टाइम रहती हैं, अपने आप ठीक होती हैं, कभी कुछ मेडिकेशन से ठीक होती हैं, तो इसी तरीके से है ये।
तो इसके लिए अक्सर आपको यानी पेशेंट से सुनना पड़ता है, डॉक्टर साहब इतने टाइम से तो हम दवा खा रहे हैं आखिर सही क्यों नहीं हो रहा है।
एग्जैक्टली कभी कभी लोगों को ये लगता है कि भाई ये इतने दिन से मेरी ब्लड प्रेशर की दवा चल रही है, तो जो समझते हैं इस चीज़ को उनका तो कोई ऐसा कोई कंसर्न नहीं होता है, बट अदरवाइज़ कुछ लोग जो होते हैं उनको लगता है कि अभी तक ये ठीक नहीं हुई है, तो उनको हमें समझाना पड़ता है कि नहीं ठीक होगी बट अभी फ़िलहाल आप लेते रहो दवाइयाँ।
बिल्कुल, क्योंकि आपने जैसे कि पहले ही मेंशन किया कि ये क्रॉनिक डिजीज़ होती है और फिर ये लाइफ टाइम कहीं ना कहीं इसकी दवाओं को खाना पड़ता है।
हाँ जी, हाँ जी।
या तो फिर इससे पहले आप अवेयर रहें, ऐसी चीज़ें होने से पहले ही आप अपनी लाइफ स्टाइल को इस तरह बना के रखें कि ऐसी डिजीज़ से आपका पाला ना पड़े।
एग्जैक्टली, एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभी लाइफस्टाइल से आप कुछ प्रोसेस को डिले कर सकते हो, उसकी सीवियरिटी को कम कर सकते हो, लेकिन कभी कभी कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो जीन्स में होते हैं, कुछ फैमिली ट्रेट्स होते हैं कि पता चलता है कि किसी की फैमिली में है तो वो प्रॉब्लम आने वाली जनरेशन में आ जाती है। तो उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आपके लाइफस्टाइल चेंजेस से आप उससे बच सकते हैं, बट ये है कि लाइफस्टाइल चेंजेस से वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है।
हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि कुछ ऐसी भी होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं, तो उस तरह की प्रॉब्लम तो खैर फेस करता है इंसान, लेकिन ये कि अगर क्योर किया जाए पहले ही, सॉरी प्रिकॉशन लिया जाए,
तो उससे आप डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा।
बिल्कुल, आपने क्रॉनिक डिजीज़ की बात की, सीजनल डिजीज़ में मानसून के वक्त में बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो लोगों के बीच में होती है, ज़्यादातर वायरल फीवर देखने को मिलता है।
हाँ जी, हाँ जी।
ये फीवर वायरल कैसे हो जाता है?
एक्चुअली वायरल फीवर तो यूं बोल दिया जाता है कि उसका कॉज या एटियोलॉजी जो होती है वो वायरस होती है, और आमतौर पर ये रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पे इसका असर आता है। फीवर होता है, कफ होता है, कोल्ड होता है, और ये चूँकि वायरल कॉज होता है तो ये स्प्रेड भी ईजिली हो जाता है, और ये सीजनल वेरिएशन से होता है, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद ये अपने आप ख़त्म भी हो जाता है, बट जितने दिन ये रहता है, जितनों को इन्फेक्ट करता है, तो ये काफ़ी परेशान करता है। और मानसून में चूँकि थोड़ा मॉइस्ट ह्यूमिड रहता है तो इसमें थोड़ा और भी इन्फेक्शियस डिजीज़ बढ़ती हैं, कुछ गैस्ट्रोइंटराइटिस वगैरह के भी केसेस बढ़ जाते हैं, और वो सब अगर आप प्रॉपर अपनी हेल्थ का केयर करें, प्रिकॉशंस लें, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखें, हेल्थ एंड हाइजीन का केयर करें, तो काफ़ी हद तक इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है।
ओके डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा जाता है कि किसी को भी अगर वायरल फीवर होता है या कुछ भी हेडेक होता है तो वो 2-4 ऐसे दवाओं का नाम रट लेते हैं जिसको कहते हैं बस इसको खा लो, ये रामबाण है
जी।
तो काफ़ी हद तक तो ठीक है, हालांकि इस पर खैर अभी आप ही आपसे मैं राय जानना चाहूँगा, लेकिन ये कितने हद तक सही और कितना नुकसान कर सकता है अगर हर चीज़ के लिए आप बिना किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और वो दवा मांग के खा लेते हैं?
देखिए अभी क्या हुआ, लास्ट फ्यू इयर्स में हमने कोविड भी फेस किया, और कोविड ने काफ़ी हम लोग का लॉस किया, लेकिन कोविड ने बहुत कुछ हम लोग को अवेयर भी किया, और इवन गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ऐसी नोटिफिकेशंस आई थी जो कुछ बेसिक मेडिसिंस और विटामिंस रिकमेंड की गई थी कि आप अगर कोई सिम्टम्स हैं तो आप ले सकते हैं, और वो OTC प्रोडक्ट्स लाइक ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स हैं कि कुछ माइल्ड प्रॉब्लम्स के लिए, माइल्ड फीवर के लिए कुछ ड्रग्स लाइक पैरासीटामोल, कोई विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इस तरह की चीज़ें आप लेते हैं और कुछ हद तक आप उससे अगर बेनिफिटेड होते हैं, ठीक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर रिपीटेडली कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है और आप जाके बार बार मेडिकल स्टोर से या किसी के कहने पे कुछ भी ले रहे हैं, तो वो मैं समझता हूँ उसको अवॉइड करना चाहिए, एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट योर डॉक्टर।
ओके, तो आपने ये कहा कि भाई इस चीज़ को अवॉइड करके अगर लगता है कि कुछ भी ज़्यादा है या कुछ अलग सा है तो फौरन जाके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए।
हाँ जी
बिल्कुल, ये सही बात है। डॉक्टर साहब, आप तो लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर करते हैं, और अब भी आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, काफी ज्यादा हृष्ट पुष्ट हैं और चेहरे पे एक स्माइल है।
थोड़ा कम होना है मुझे।
नहीं 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 बिल्कुल है, और मैं तो दुआएं देता रहूंगा कि भाई आप ऐसे हमेशा हेल्दी रहे, मुस्कुराते रहे। आप खुद के लिए क्या करते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, वैसे तो आप लोगों को बताते हैं कि भाई अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी करो। मैं जानना चाहता हूँ इतनी ज्यादा बिजी स्केड्यूल में अपने लिए टाइम निकालना, फैमिली के निकालना, कैसे मैनेज करते हैं और खुद के लिए क्या करते हैं?
सर मैं बहुत ही केयरलेस आदमी हूँ और मुझे शायद रेडियो पे या ये ऑन एयर बोलते थोड़ी शर्म भी आ रही है कि मैं एडवाइस तो बहुत अच्छी अपनी पेशेंट्स को देता हूँ बट अपने ऊपर बहुत कम लागू कर पाता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है शायद डॉक्टर्स एज सच अपने जो भी उनका बिजी शेड्यूल या टफ लाइफ होती हो, वो अपने पेशेंट्स को बहुत अच्छा एडवाइस करते हैं, उनकी हेल्थ की तो पूरी केयर करना चाहते हैं स्वस्थ रहें, लेकिन अपने ऊपर शायद वो उतना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। कुछ करते भी होंगे बट हम कोशिश यही करते हैं कि हम भी एक अच्छा रूटीन फॉलो करें, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें, और कभी कभी हो भी जाता है, चीज़ें बड़ी रेगुलराइज हो जाती हैं, और अक्सर नहीं भी हो पाता है। तो मेरा तो बस ये कहना है कि चूंकि वी आर अवेयर, वी नो द थिंग्स, तो वी कैन एडवाइज अदर्स एंड अदर्स शुड फॉलो इट, और हम भी कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ करें।
बिल्कुल सही बात है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप ऐसा खुद के लिए करते होंगे जो सिर्फ आपके लिए होता होगा। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था एक फेज होता है, कभी आपको सिंगिंग पसंद था, कभी आपको गेम पसंद था, अभी फिलहाल के लिए क्या पसंद है?
एक्चुअली अब सर टाइम नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी बच्चों के साथ थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल लिया, हम लोग की एसोसिएशन हैं तो उसमें कभी कभी कोई कल्चरल एक्टिविटी हुई तो थोड़ा बहुत सिंगिंग कर लिया, और जो पहले कहते थे ना बाथरूम सिंगर्स होते हैं, तो वो तो खैर शुरू से ही थे, अपना कुछ कुछ गुनगुनाते रहते थे जो पसंद आ जाए, लेकिन कभी भी कोई भी पूरा गाना नहीं आता था। तो इसी तरीके से चलता है। बाकी थोड़ा मींस मुझे नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ का बहुत शौक रहता है, मैं पेपर डेली पढ़ता हूँ, उसके बगैर मुझे थोड़ा अनइजीनेस रहती है अगर मैं ना देख लूँ थोड़ी देर तो, चाहे जैसे भी मैं उसको करता हूँ, और वही है कि चलता रहता है इसी तरह कुछ ना कुछ।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये हॉबीज को फॉलो करना किसी का भी अपनी डेली लाइफ में कितना ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट मानते हैं?
मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, और मुझे लगता है सबके पास कुछ ना कुछ हॉबी होती है, नहीं होगी तो वो अगर शायद एनालाइज करें तो उनको पता चलेगा कि उनकी क्या हॉबी है, और 24 घंटे में अगर वो थोड़ा टाइम निकाल के कभी भी एनी टाइम अगर उसको थोड़ा भी अपनी लाइफ में लाते हैं तो उससे एक मेंटल पीस मिलता है, एक रिलैक्सेशन मिलता है, क्योंकि इतना बिजी लाइफ है, इतना प्रेशर है, सब हौश पौश है, सब तरफ लोग बिजी हैं, टाइम की कमी है, तो इसी में ही निकाल के टाइम कुछ करना होता है, और वो करने से बहुत आपको एक इजीनेस फील होती है।
ओके, आपने कहा कि हॉबीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो उसको करने से इजीनेस होता है फील। हम जानना चाह रहे हैं क्योंकि आज यूथ बहुत ज़्यादा देखा है डिप्रेशन की दिक्कत बताता है, एंजाइटी की दिक्कत होती है, ऐसे आपके पास केसेस आते हैं तो आप क्या एडवाइस करते हैं?
एक्चुअली मुझे लगता है जो थोड़ा यंगस्टर्स हैं, एक तो कुछ ज़्यादा बहुत एम्बिशियस होना अच्छा है बट बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होना नहीं चाहिए, आपको अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स करने चाहिए, और अभी जो इतना टेक्नोलॉजी डेवलप कर गई है, इतना मोबाइल और कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स इतना सब आ गया है सबकी लाइफ में कि आदमी का काफ़ी टाइम और काफ़ी ब्रेन उसमें इन्वॉल्व रहता है, अच्छा खासा टाइम, वो जज नहीं कर पाता बट 24 घंटे में काफ़ी टाइम उसमें निकल जाता है, और वो कहीं ना कहीं अच्छा इम्पैक्ट भी देता है, आपका काम उससे होता है, बहुत चीज़ें इजी कर दी है उसने और उससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ नेगेटिव पार्ट भी है उसका, तो वो जो इम्पैक्ट पड़ता है वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरा मैंने देखा कि अभी क्या है कि फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड एंड लाइक टोबैको यूज़ एंड अल्कोहल यूज़, ये बहुत बढ़ गया है, इनकी फ्रीली अवेलेबिलिटी बहुत हो गई है, जो पहले बहुत मुश्किल से कोई शॉप या कोई वेंडर दिखता था, आजकल बहुत फ्रीली अवेलेबल है, तो वो उसकी एसेसिबिलिटी भी बढ़ गई है, लोग बहुत ईजिली उसको अप्रोच करते हैं, यूज़ करते हैं, वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है हेल्थ पे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसको अगर आदमी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करे तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन इन सबसे बचा जा सकता है। कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़, कुछ योगा, अभी तो योगा डे इंटरनेशनल मनाया जाने लग गया है और अपने इंडिया की वजह से ही उसको बहुत प्रमोट किया जाता है, तो ये सब चीज़ें अगर लाइफ में थोड़ा कुछ आ जाएं तो काफ़ी एंग्जाइटी डिप्रेशन पे असर पड़ेगा, उसका फ़ायदा मिलेगा।
जी, तो आपने सही कहा कि आउटडोर एक्टिविटीज़ की कहीं ना कहीं कमी हो गई है, अगर आप अपना बचपना उठा के देखें या मैं खुद अपना भी देखूं तो बहुत ज़्यादा खेला
बहुत
है।
बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों घर पे डांट पड़ती थी कि अब घर में भी कभी आओगे अंदर की बाहर ही रहोगे।
करेक्ट। तो वो चीज है। और गिरने पड़ने पे जैसे कभी इतना परवाह नहीं कि गिरने दो पड़ने दो, मजबूत हो गया।
पता ही नहीं चलता था पेरेंट्स को पहले के कि कहाँ गिरे कहाँ पड़े। अभी तो बहुत मॉनिटरिंग हो गई है, बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग हो गई है, वो मुझे लगता है शायद बहुत अच्छा नहीं है।
बिल्कुल सही बात है। देखिए आपने भी चूंकि अपना वो फेज निकाला है जब आप 10th में थे, लेकिन अभी देखने में ऐसा भी आता है कि बहुत सारे पेरेंट्स प्रेशराइज भी कई बार कर देते हैं।
डेफिनेटली सर, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है और बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, लोग एम्बिशियस हो गए हैं और बहुत एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है और कंपटीशन बढ़ गया है कि जबकि इसके ऊपर भी बहुत वर्कअप हो रहा है। बहुत सी ऐसी मींस रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें पता चल रहा है कि आप बच्चों को जज करिए कि वो स्टडीज़ एकेडमिक्स में जाना चाहता है कि स्पोर्ट्स में या किसी कल्चरल एक्टिविटी में या जिसमें भी। इस तरह के भी बहुत से प्रोग्राम्स आ गए हैं आज की डेट में जो पहले नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि बच्चों पर बहुत प्रेशर रहता है और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इसके लिए।
पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ऐसी सिचुएशन में जब बच्चे को अपना करियर बनाना हो, तो कितना उसको मौका देना चाहिए कि वो खुद से सोच पाए। हालांकि माँ बाप का ये कहना होता है कि भाई अभी इतना छोटा है ये नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो कैलिबर बच्चे में है वो खुद बहुत अच्छे से जो जानता है वो बच्चा ही जानता है कि वो किन चीज़ों को कर सकता है किन चीज़ों को नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे स्टार्टिंग से ही मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अगर मुझे ये कहा जाता कि नहीं तुम्हें बीटेक करना है तो शायद मैं नहीं जा पाता, या जाता तो पैसे डुबा के चला आता। लेकिन मुझे जो चीज़ पसंद थी मेरी फैमिली ने कभी उसके लिए रोका, हमने जो चाहा वो किया, आज जो कुछ भी कर रहा है मैं अपने काम से सेटिस्फाइड हूँ। तो सेटिस्फैक्शन अपने काम से होना ये कितना इम्पॉर्टेंट है
सर? ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने काम से सेटिस्फाइड हैं तो इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। और रहा बात कि किसका क्या प्रेशर है और किसको क्या बनना चाहिए, इसमें भी एक बड़ा डिलेमा कन्फ्यूजन है कि अक्सर बच्चे भी बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, उन्हें भी बहुत क्लियर कट कंसेप्ट नहीं रहता है कि मुझे क्या पसंद है क्या बनना है। और कभी कभी पेरेंट्स का ये रहता है, जिन बच्चों को मालूम होता है कि मुझे क्या करना क्या बनना है, तो पेरेंट्स को लगता है शायद इस लाइन में इसका कोई आगे फ्यूचर स्कोप नहीं है, तो उसको वो चाहते हैं दूसरी तरफ लाना। वो भी कुछ हद तक, मैं ये नहीं कहूँगा वो गलत हैं, उनका अपने रीजंस होते हैं, उन्होंने लाइफ देखी हुई होती है, उन्हें मालूम होता है एग्जैक्टली कैसे क्या फ्यूचर में है। तो ये थोड़ा माइनस रहता है, बट एक लेवल पर आप जज कर लेते हो कि बच्चा क्या चाहता है पेरेंट्स क्या चाहते हैं, तो एक लिमिट्स होनी चाहिए उसमें। अगर आप उसको मैनेज करते हो हैंडल करते हो तो चीज़ें दे गो वेल। अब बिल्कुल ही किसी को अगेंस्ट कर दो या किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओ या बिल्कुल ही उसके मन के बाहर की चीज़ करो तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, वो आगे लॉन्ग टर्म्स में प्रॉब्लम आती है।
बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कॉन्वर्जेशन की दिक्कत आती है।
जी जी, बस एक थोड़ा अपना शेयरिंग हो आपस में और कम्युनिकेशन गैप ना हो, चीज़ें क्लियर हों। अगर पेरेंट्स को लगता है बच्चा गलत है तो उसको कहीं ना कहीं मोटिवेट करें। और आजकल पढ़ाई भी ज़्यादा हो गई है, स्कूल्स वगैरह में भी बहुत प्रेशर हो गया है, तो कहीं ना कुछ चीज़ें वो कम्युनिकेशन से और बातचीत करके उसको सेटल किया जा सकता है।
बिल्कुल, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर क्लास में पूरी क्लास में 40 बच्चे हैं तो फर्स्ट तो एक ही को आना है।
हाँ जी, नहीं अभी तो नया एजुकेशन सिस्टम, नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही, मुझे बहुत उसका नहीं मालूम, लेकिन पहले काफ़ी टाइम से जो प्रैक्टिस हो रहा है कि अब ग्रेडिंग कर दी है, मींस इट्स नॉट लाइक रैंक सिस्टम ख़त्म कर दिया है, तो ये भी अच्छा है कि एक स्लैब बना दिया कि इस लेवल तक बच्चे हैं तो उनका ग्रेड ये है ए बी सी या जो भी हो, बट रैंकिंग एज सच मुझे लग रहा है शायद ख़त्म हुई है, तो वो एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है।
बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने भी जैसे अभी एनईपी की आपने बात की है, तो एनईपी पे ज़्यादातर प्रैक्टिकल जो चीज़ें उस पर ज़्यादा गौर किया गया है कि बच्चा प्रैक्टिकली जितना करेगा उतना ज़्यादा सीखेगा।
एग्जैक्टली, मैं भी इसको मानता हूँ कि पढ़ाई अपनी जगह है, कढ़ाई अपनी जगह है, और जिसके पास दोनों है तो वो बेस्ट है।
क्या बात है, तो कढ़ाई का मतलब हम क्या समझे?
जो आपने कहा कि जिंदगानी ऐश कर घुमाई कर, वो भी ज़रूरी है, सिर्फ एक कमरे में बैठ के पढ़ते पढ़ते ही पूरा जीवन निकल जाए तो कोई मतलब नहीं है।
right.
मतलब जैसे हम लोग कहते थे ना कि फिशिंग के बारे में पढ़ना जितना ज़रूरी है उतना ही फिशिंग करना भी ज़रूरी है।
क्या बात है, तो जितना प्रैक्टिकल इंसान करता है उतना ही ज़्यादा उनको समझ में आता है, उतना ही ज़्यादा वो चीज़ों को जोड़ पाता है। और स्कोप की अगर बात की जाए तो लगभग हर फील्ड का अपना स्कोप है, फिर चाहे वो एक राइटर हो, चाहे वो एक सिंगर हो, चाहे वो एक डॉक्टर हो, चाहे वो एक इंजीनियर हो, अगर खुद की मर्जी से कर रहा है तो सारे काम अच्छे हैं, और अगर कराया जा रहा है और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है
बिल्कुल बुरे हैं,
तो
बिल्कुल
फिर वो बुरे हैं, क्योंकि वो फिर सोसाइटी को अच्छा तो नहीं दे पाएगा।
सोसाइटी को क्या, वो उसके लिए भी नहीं अच्छा है,
उसके लिए भी नहीं अच्छा है। और शायद इसी वजह से लोग कहते हैं कि भाई इस काम में प्रेशर ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है, जो उस काम को एंजॉय करते हैं वो कितना ही प्रेशर होता है झेल ले जाते हैं, और जिनको नहीं करना होता उनको थोड़ा काम भी बहुत ज़्यादा लगता है। सो डॉक्टर साहब आपसे सारी चीज़ों पे बातचीत हुई, काफ़ी मज़ा आया आपसे बातचीत करके, और अच्छी बात ये रही कि आपने खुल के हर चीज़ पे अपनी राय रखी, आपने अपनी लाइफ के बारे में बताया किस तरह से आप हरफन मौला रहे हैं, किस तरह आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया है। इससे हमारे श्रोताओं में जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं वो भी इस बात को अगर समझेंगे कि अपने बच्चे को स्पेस देंगे, उनसे कम्युनिकेशन गैप को मिटा देंगे, उनसे कम्युनिकेट करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, या फिर उनको स्कोप देंगे पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं बच्चा भी आपका बेहतर करेगा। और ऐसे ही तो हम एक दूसरे से सीखते हैं, समाज में हमारे सामने बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे हम एक दूसरे का एग्जाम्पल मान के सीखते रहते हैं। डॉक्टर साहब लास्ट में जाने से पहले एक सवाल जो हम अपने हर गेस्ट से पूछते हैं वो आपसे भी हम पूछ रहे हैं, क्योंकि आप बैठे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM के स्टूडियो में जो कि देवी पाटन मंडल और गोंडा का पहला FM है। आपको क्या लगता है इसके आने से गोंडा में जो इसको सुन रहे हैं क्या इम्पैक्ट होने वाला है?
सर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, और मैं गोंडा में रहा हूँ बट कम रहा हूँ स्कूलिंग के लिए, लेकिन अदरवाइज़ मैं बाहर बहुत रहा हूँ, और जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं या इवन अपने यहाँ की जो मेट्रोपॉलिटन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे रेडियो कल्चर शुरू से है, और फॉरेन कंट्री में तो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती, हर घर में रेडियो होता था और 24 आवर सर्विसेज होती थी, रेडियो चलता ही रहता था, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज़ अगर ऐसा करती थी तो कुछ सोच के ही करती थी। और मैंने भी उसी में रहते हुए काफ़ी रेडियो को FM को यूज़ किया है, मैंने देखा है कि इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ काफ़ी कुछ नॉलेज की चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल यूज़ की चीज़ें हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, और मुझे बड़ी खुशी है, मैं आप लोग को सबको कंग्रेचुलेट करता हूँ कि गोंडा में एटलीस्ट ये आपने इनिशिएटिव लिया, स्टार्ट किया 89.6 FM, और इससे डेफिनेटली आने वाले टाइम में यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बेनिफिटेड होगी, और जब वो यूज़ टू हो जाएगी तो उसको कहीं ना कहीं एक पूरा एक जिसे पैकेज कहते हैं मिलेगा, एंटरटेनमेंट जिसे हम लोग कहते हैं कि एकेडमिक्स, एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन और सब चीज़, तो इट्स वेरी मींस एनकरेजिंग थिंग एंड आई ऑल कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल।
थैंक यू सो मच। और जैसा कि अभी आपने बताया कि हाँ डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे से फॉलो करती है, आपने भी इसको काफ़ी सुना है, चाहे वो बाहर की बात रही हो या वापस जब इंडिया आए थे तो आपने दिल्ली का भी जिक्र किया था कि आपने वहाँ पे भी FM को काफ़ी ज़्यादा सुना है, और सही कहा आपने, कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट प्लस इन्फॉर्मेशन यानी इंफोटेनमेंट लेके ही हम चलते हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपसे बहुत अच्छी बात हुई।
मैं आप लोग को सबको तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ, और माई बेस्ट विशेस टू यू, मैं पाठक जी को थैंक्स कहता हूँ, और अदनान जी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने मुझसे वार्तालाप की, बहुत दिल खोल के बातें पूछी, और श्वेता जी जिन्होंने मुझको यहाँ वेलकम किया आते ही, और द बेस्ट पार्ट इज ऑल आर फ्रॉम दिस प्लेस, दे बिलोंग टू गोंडा, दे आर मीन्स स्टूडेंट ऑफ गोंडा, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने इतने अच्छे से इंटरेक्ट किया और एक ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया। थैंक यू,
थैंक यू सो मच, और बिल्कुल सही कहा आपने, सब के सब देसी हैं गोंडा वाले,
जी, जी, ये मुझे बेस्ट पार्ट लगा।
और लहराएंगे परचम जरूर, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM का परचम लहरा, क्योंकि जब कहते हैं नियत अगर अच्छी हो तो काम अच्छा होता ही, और जब अच्छी नियत लेके चल रहे हैं तो हम पे अपने पे तो भरोसा है, अपनी पूरी टीम पे भरोसा है, और अपने गोंडा वासियों पर भी भरोसा है। थैंक यू सो मच,
थैंक यू, नमस्कार।
नमस्कार, अपने श्रोताओं से हम ये कहेंगे कल फिर से आपकी हमारी मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ, उनकी जिंदगी से जुड़े हुए पहलुओं को जानेंगे, उनके काम के बारे में जानेंगे। सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद थे आपके अपने वाले स्टूडियो में।
ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
गोंडा शहर की धड़कन।
जिंदगी क्या कुछ आज नई फरमाइश आई है और क्या कुछ हम एंटरटेनमेंट करने वाले हैं आपके अपने प्रोग्राम गोंडा मैसेज मसाला में आपकी अपनी आरजे जिमी और डोडो के साथ, जिसमें गोंडा मैसेज मसाला हम सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत से आपके फरमाइशी सॉन्ग। बहुत सारा फन होता है, बहुत सारी बातें होती हैं और हम अंताक्षरी खेलते हैं आरजे जिमी और डोडो के साथ। क्यों डोडो?
बिल्कुल ठीक कहा तुमने जिमी, हम अंताक्षरी खेलते हैं और बहुत सारा फन और बहुत सारी बातें होती हैं हमारे प्यारे लिसनर के साथ। तो दोस्तों बने रहिए गोंडा मैसेज मसाला प्रोग्राम में और सुनते रहिए 11.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
गोंडा शहर की धड़कन।